अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। हे सोपंच नमो यारो सर्व पाव पनाशनो मंगलाणम् च सव्यसिम् परमम् हुई मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणतोधम्मो मंगलम् चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतोधम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। यहाँ बारह भावना के आधार से अपने को चर्चा करनी है और ये बारह भावनाएं देव शास्त्र गुरु पूजन के आधार से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बारह तो इनकी संख्या है और भावना चिंतन के लिए है। पहले भी आप लोगों ने बारह भावना की चर्चा की होगी, पढ़ी सुनी होगी। माने ये बारह भावनाएं पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ करने के लिए नहीं है, ये चिंतन करने के लिए है। भावना है ना इसका नाम, भावना माने चिंतन करना। इनको द्वादश अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, द्वादश अनुप्रेक्षा। एक बहुत प्राचीन अनुप्रेक्षा मिलती है जो कार्तिकेय स्वामी के नाम से है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, एक पूरा प्राकृत भाषा में लिखा गया 2000 वर्ष पहले का, जिसमें कार्तिकेय स्वामी ने बारह भावनाओं की ही चर्चा की है। हाँ, मुद्राची में है बिल्कुल। तो सिर्फ बारह भावनाओं की चर्चा है उसमें, अनुप्रेक्षा की चर्चा है। अनुप्रेक्षा माने चिंतन, कैसा चिंतन करें हम घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी इस जीव को कैसा चिंतन करना चाहिए, कहन दीजिए कैसा चिंतन होना चाहिए, हमारा चिंतन किस प्रकार का हो सकता है, कैसी सोच होनी चाहिए, विचार कैसे चलने चाहिए, हम पदार्थों को कैसा देखें, देखने का नजरिया कैसा हो हमारा। देखिए घर में परिवार में रहते हुए जो चल रहा है उसमें कुछ परिवर्तन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, किसी की भी नहीं है। पर में फेरफार तो ये जीव कर ही नहीं सकता है, तो फिर अपने में कर सकता है क्या, कि अपने में भी फेरफार नहीं कर सकता है, ये जीव सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो यदि मैं जगत का कोई काम करता नहीं हूँ, यदि कोई काम कर नहीं सकता हूँ, तो फिर क्या है मेरे हाथ में, कि आपका चिंतन, आपके विचार। बहुत बड़ी ताकत है चिंतन की, आपको पता नहीं है। हमारे वर्तमान परिणामों का इफेक्ट तीनों कालों में पड़ता है, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। हमारे वर्तमान में चल रहे भावों का, विचारों का, चिंतन का फल या रिजल्ट या उससे इफेक्टिव होते हैं तीनों काल। आपको लगेगा ऐसा कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, भूतकाल कैसे इफेक्टिव होगा, प्रेजेंट तो समझ में आ रहा है हमारे को और फ्यूचर भी समझ में आ रहा है कि वर्तमान परिणामों से कर्म बनेंगे और भविष्य प्रभावित होगा, पास्ट कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए वर्तमान का फल वर्तमान में तो मिल रहा है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। जैसा ये जीव सोचता है, जैसा चिंतन करता है, जैसे इसके आकुलता और अनाकुलता रूप परिणाम होते हैं, वैसा सुख शांति का अनुभव करता है। ये वर्तमान लाभ तुरंत, माने उधार नहीं है, उधार का काम नहीं है। करंट में जैसा विचार आया वैसा तुरंत हमने अनुभव भी कर लिया, अच्छा अनुभव किया या बुरा अनुभव किया, वर्तमान में हो गया। और इस वर्तमान के साथ साथ ही जो नवीन कर्म बंधेंगे वो भविष्य में फल देंगे, اپنا آبادھا کال پورا کر کے. کرموں کی چرچا اپن وسترت شام کو کریں گے, ہے نا, تو بھوشیہ میں بھی پھل پڑے گا اس کا. اور ورتمان کے پریناموں سے ہی بھوتکال میں جو ہم نے کرم باندھے تھے, جو بندھے ہوئے پڑے ہیں ابھی 20 سال پہلے, 10 ورش پہلے, 100-200 سال پہلے, ہزاروں ورشوں پہلے بھی جو کرم ابھی بھی ورتمان میں بندھے ہوئے رکھے ہیں, ان پریناموں سے, اس چنتن سے اس میں پڑے پڑے بھی پریورتن کیا جا سکتا ہے.
سنکرمن ہوا نا,
سنکرمن ہو جاتا ہے, اتکرشن ہو جاتا ہے, اپکرشن ہو جاتا ہے, کہ 10 پرکار کی اوستھائیں ہیں کرموں کی. ہمیں تو صرف یہاں یہ بتلانا ہے کہ ہمارا ورتمان کا چنتن کتنا زیادہ مہتوپورن ہے. یا تو ہم لوگ پاسٹ میں جیتے ہیں یا فیوچر میں جیتے ہیں, ورتمان میں تو جیتے ہی نہیں ہیں. یا تو ہم پاسٹ میں کیا کیا ہے وہ سوچ سوچ کر کے, یہ کیوں کر دیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا ہو جاتا تو اچھا رہتا, ایسا کیوں نہیں ہو گیا, پاسٹ پاسٹ کی باتیں کرتے رہیں گے, وہی سوچتے رہیں گے, وہی چنتن چلتا رہے گا. یا پھر ہم ایسا کریں گے, ہماری یہ پلاننگ ہے آگے ایسا کرنے والے, ایسا ایسا ہوگا. یا تو پاسٹ کے بارے میں وچار کرتے رہتے ہیں یا فیوچر کے بارے میں وچار کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ پریزنٹ میں نہیں جیتے, ورتمان میں جینے کی بات کر رہے ہیں یہاں, کیونکہ ورتمان سب کو پربھاوت کرتا ہے. ہمیشہ ورتمان میں جیے. دیکھیے جو چلا گیا اس میں تو پریورتن سمبھو نہیں ہے, آپ سوچ وچار کر کے کیا ہوگا. اور جو بھوشیہ آیا نہیں ہے اس میں ابھی کیا پریورتن کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے وکلپوں سے تو کچھ ہوگا نہیں, تو بھوشیہ کے بارے میں وکلپ کرنے سے بھی کیا ہوگا. تو نہ تو بھوتکال کے بارے میں وچار کرنے یوگیہ ہے, نہ بھوشیہ ورتمان میں وچار کر کے بگاڑنے یوگیہ ہے. ورتمان کا چنتن کریں, صرف ورتمان چنتن. اور ورتمان چنتن کیسا ہو اس کی چرچا کی ہے بارے بھاوناؤں نے. سینکڑوں ودوانوں نے بارے بھاوناؤں لکھی ہے, شتادک ودوانوں کی بارے بھاوناؤں اپلبدھ ہے. ہمارے یہاں سے تو ایک پستک پرکاشت ہوئی ہے, بھاونا شتک نام ہے اس کا. بہت لوگوں نے, مطلب 2000 ورشوں میں, میں ایسا کہہ سکتا ہوں جس کسی بھی ویکتی کو تھوڑا بہت بھی پدیہ رچنا کرنا آیا ہو وہ بارے بھاوناؤں کی چرچا کرنے لگتا ہے. بابو جگل کشور جی نے بھی لکھی, ڈاکٹر صاحب کی ہے ہی بارے بھاونا, بہت ودوانوں کی, جے چنجی چاوڑا صاحب کی بارے بھاونا ہے, کارتکیہ سوامی کی بارے بھاونا ہے. ایسا سنتے ہیں انہوں نے کند کند سوامی نے بھی انپریکشاؤں کی رچنا کی تھی. وارس آنو ویکھا آچاریہ کند کند سوامی کا گرنتھ کہا جاتا ہے. وارس آنو ویکھا, آنو ویکھا مانے وہی انپریکشا. کتنے بھی ویکتیوں نے بارے بھاوناؤں کی رچنا کی ہو, لیکن اس میں 12 باتیں ایسی ہیں جو کامن ہیں, سبھی تو ایک جیسی ہوں گی بارے بھاوناؤں, اور سب کا کرم بھی ایک سمان ہے. ہم لوگ کرم کے بارے میں بھی چرچا کریں گے, چنتن کس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور بڑھتے ہوئے اس چنتن کے مادھیم سے جیو کیسے سکھی ہوتا جاتا ہے. بارے بھاوناؤں کا چنتن دکھی ہونے کے لیے نہیں ہے, بارے بھاوناؤں کا چنتن سکھی ہونے کے لیے ہے. بارے بھاوناؤں کے نام جانتے ہیں آپ لوگ, انتیہ, اشرن, سنسار, ایکتو, انیتو, اشوچی, آسرو, سمور, نرجرا, لوک, بودھی درلب اور دھرم. تو جب ہم انتیہ اشرن وغیرہ کی چرچا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, سب چلا جائے گا, سب چھوٹ جائے گا, ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس پرکار کا چنتن تو ہمارے کو دکھ دینے والا ہوا, رونے رونے کا چنتن, روتے رہو آپ, ارے اب رونے سے کیا فائدہ, کیونکہ بارے بھاوناؤں کا چنتن دکھ دینے والا چنتن ہے,
نہیں ہو سکتا.
ان بارے بھاوناؤں کے چنتن کے سندرب میں دولت رام جی چیڑالا میں ایسا کہتے ہیں, ان چنتت سم سکھ جاگے جم جلن پون کے لاگے. ان بارے بھاوناؤں کا چنتن کرنے سے سمتا روپی سکھ جاگرت ہوتا ہے. یدی سمتا بھاو جاگرت نہ ہوئے تو سمجھ لیجیے چنتن برابر نہیں ہے. چنتن کب برابر کہلائے گا, جب سمتا بھاو ہو. और समता भाव नहीं है, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, किसी के वियोग की चिंता में कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ दे नहीं सकता है, हैं अशुचि माने अपवित्रता का चिंतन कर रहे हैं, ये सब जो प्रारंभ की छह भावनाएं हैं, ये इसी प्रकार की तो लगती है। इन 12 भावनाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन, स्टार्टिंग की 6 अलग और लास्ट की 6 अलग। जो स्टार्टिंग वाली 6 हैं, उनको कह सकते हैं वैराग्य उत्पादक चिंतन, और लास्ट वाली 6 हैं तत्व परक चिंतन। और पूरे का यदि एक वाक्य में कहूं तो वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम 12 भावना। अनुप्रेक्षा किसका नाम? वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन। तो स्टार्टिंग की 6 भावनाओं के माध्यम से जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होती है। संसार का स्वरूप ख्याल में आता है, शरीर का स्वरूप ख्याल में आता है, भोगों की बात ख्याल में आती है कि क्या स्वरूप है उनका। हम जिनके पीछे भाग रहे हैं वे स्थिर रहने वाले नहीं है। तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए स्टार्टिंग की प्रारंभ की 6 भावनाएं, और बाद में आश्रव, संवर, निर्जरा, ये सब तत्व से संबंधित है। तो तत्व परक चिंतन। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनका चिंतन हम कैसे करें। 12 भावनाओं का पाठ तो समाज में बहुत होता रहा, आपने राजा राणा छत्रपति हातिम के अखबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात अनेक बार सुनी होगी। हम तो देखते हैं वहाँ हमारे यहाँ इंडिया में तो 12 भावनाओं का चिंतन दैनिक करते पाठ करते हैं। बुजुर्ग महिलाओं में देखेंगे या अबाउ 40 यदि आप देखेंगे तो 90% लोगों को ये 12 भावनाएं याद मिलेगी, कंठस्थ है। और प्रतिदिन 12 भावनाओं का पाठ करना उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल डेली रूटीन में हमारे को 12 भावना का पाठ करना ही है। लेकिन यदि उनसे 12 भावनाओं के नाम पूछे जाएं, तो शायद वे नाम भी नहीं बता पाए, क्योंकि पाठ में नाम तो आते नहीं है। तो पाठ करते अब देखिए, सबसे पहले अनित्यता का चिंतन क्यों किया गया, फर्स्ट नंबर पर अनित्य भावना क्यों, और अनित्य भावना का चिंतन कैसे किया जाना चाहिए, बहुत सुंदर चर्चाएं की है। जितने लोगों ने 12 भावनाएं लिखी उसमें सबसे पहला नंबर अनित्यता को ही क्यों दिया। क्रम भी तो आगे पीछे हो सकता था, क्रम भी आगे पीछे हो सकता था, चिंतन भी अलग प्रकार से हो सकता था। 12 लिखी है तो यही 12 शब्द क्यों चुने गए, आखिर उनके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला नंबर है अनित्यता का, उसका कारण ये है कि यह जीव, जो भी जीव है, हम लोग सब ये सोचते हैं जो मिला है कम से कम वो तो बना रहे, जो चीज प्राप्त हुई है, जो चीज मिल गई है, वो चीज बनी रहे,
छूटे नहीं,
छूटे नहीं। नई चीज की प्राप्ति की भावना तो होती है, लेकिन उसके बारे में तो ये कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि क्या पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जो मिल गई है वो तो है ना सामने, हम सोचते हैं ये खराब नहीं हो, ये चले नहीं जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, ये छूट नहीं जाए हमारे से, ये भावना सब जीवों की रहती है, चाहे वो फैमिली के बारे में हो, शरीर के बारे में हो, या संयोगों के बारे में हो। नहीं सही हमारे को अच्छा बंगला मिले लेकिन जो है ये तो मेंटेन रहे, नहीं सही अच्छा मोबाइल हो लेकिन जो है कम से कम ये तो अच्छा रहे, नहीं सही हमारे को मर्सिडीज और अच्छी गाड़ी मिले लेकिन जो है कम से कम ये तो ठीक रहे। ये सबकी इच्छा रहती है, ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए सबसे पहले इस चीज को पकड़ा कि अनित्यता के बारे में चिंतन करो कि भैया जिन चीजों को आप स्थिर सोच रहे हैं, स्थिर बनाए रखने की सोच रहे हैं, उनमें से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहेगी। सबसे पहला चिंतन, कोई चीज स्थिर नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये चिंतन कि मैं बनाए रखूंगा, तुम्हारा ये चिंतन कि ये बनी रहेंगी, ये चिंतन ही खोटा है, ये व्यर्थ का चिंतन है। आपका ये चिंतन भविष्य में भी दुख देने वाला है, क्योंकि हम बनाए रखना चाहेंगे और वो बनी नहीं रही। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जग में जिसको मैं अपना कहता हूँ, इसी देवशास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियाँ हैं, फल की पंक्तियाँ हैं, फल के छंद की। जग में जिसको भी अपना कहता हूँ, मुझे छोड़ करके चल देता है। देखिए, जगत का ऐसा स्वरूप है, या तो पदार्थ हमें छोड़ करके चले जाएंगे, या फिर हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हैं संयोग की क्या परिभाषा है? संयोग किसे कहते हैं? के साथ जो वस्तुएं मिलती होंगी उन्हें संयोग कहते होंगे, संयोग किसे कहेंगे? चोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहले ही अध्याय में, दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर परिभाषा लिखी संयोग के बारे में। क्या लिखा उन्होंने? जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। गजब हो गया, संयोग की परिभाषा लिख रहे हैं, वियोग के माध्यम से समझा रहे हैं कि हाँ, जिसका नियम से वियोग हो उसे संयोग कहते हैं, जो नियम से छूटेगा उसे संयोग कहते हैं। ऐसा तीन लोक तीन काल में संभव नहीं है कि उसका वियोग ना हो। आई थिंक वो मोबाइल से तो नहीं फर्क पड़ रहा है उसका कुछ। तो इसी वजह से हो रहा था वो।
थैंक यू।
तो जो भी बारह भावनाएं हैं, इन सब बारह भावनाओं में सबसे पहले अनित्यता की बात करी, और यहाँ बारह भावना प्रारंभ करने के पहले भी इन्होंने एक बहुत सुंदर छंद दिया है जयमाला की पंक्तियों में। मैं उस छंद को पढ़ करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बहुत सुंदर लाइनें हैं, पाठ भी कर सकते हैं अपन लोग, रोजाना गुनगुना सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। भव वन में जी भर घूम चुका, देखिए ये तो युगल जी साहब ने लिखी है लाइनें, वो अपने आपके बारे में कह रहे हैं। क्या हमें ऐसा फील होता है कि हम भव वन में घूम चुके हैं? अकेला घूमने की बात नहीं, जी भर के घूम चुका। हमारा कहां मन भरा है अभी? अभी तो हमारे को कोई कहे कि यहाँ घूमने चलते हैं, हम तुरंत तैयार हैं। साल में एक आध बार तो ऐसा लगता है अपने को कि कोई ना कोई घूमने का प्रोग्राम तो होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। ये कह रहे घूम चुका हूँ मैं इस पूरे संसार रूपी वन में, संसार रूपी जंगल में जी भर के घूम चुका हूँ। भव वन में जी भर घूम चुका, कहाँ कहाँ गए? पेरिस गए आप? सपना बन गए? नहीं गए? ये तो कह रहे हैं कोई जगह ही नहीं बची ऐसी, ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ पर हम नहीं गए हो। हमें लगता है अरे साहब अभी तो भोग भूमि में चल के देखते हैं कैसी होगी वहाँ की व्यवस्था, देवगति में कैसा होता होगा, उत्तम भोग भूमि में कैसा होगा। कभी हमारे को लगता है विदेश क्षेत्र चले। देखो जिनको भोगों की भावना होती है वे भोग के स्थान और क्षेत्रों को चुनते हैं, और जिनको भोगों की भावना नहीं होती वो विदेश क्षेत्र आदि ऐसी जगह चुनते हैं, श्रीमंदर भगवान के समोह शरण में चले। लेकिन कह रहे हैं कोई जगह नहीं है जिस जगह पर हम जाके नहीं आए हो और जिस जगह पर हमारा जन्म ना हुआ। ये कह रहे हैं अकेला जाने की बात नहीं है, जी भर के देखा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वापसी का टिकट लेकर के तो जाते ही हैं, रिटर्न टिकट करा के जाते हैं। फिर जब वहाँ जाते हैं हमारा मन लगता है तो वापस आने का मन नहीं होता, हमें लगता है काश दो दिन और रुक लेते। लेकिन क्या करें, रिटर्न टिकट है। ये कह रहे ऐसे नहीं घूमा, जी भर के घूमा है।
शब्द जी है,
जी है, जी भर के माने संतुष्ट हो करके, तृप्त हो करके, इसको ऐसे लगा कि बस बहुत घूम लिया मैं। ऐसा कब हो सकता है? इस लाइन का विशेष मर्म पता है क्या है? इसमें कहा है कण कण को जी भर भर देखा, एक एक कण को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए, आपके यहाँ रुके महेंद्र भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ की धरती के, पृथ्वी के एक एक कण कण को हमने जी भर के देखा। हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है? लगता नहीं, क्यों? क्या देखेंगे हम? एक एक कण कण को जी भर के देखना कैसे संभव है? तो फिर ये लाइन तो ऐसी लिखी है यहाँ पर, कण कण को जी भर भर देखा। सच में इसका वास्तविक अर्थ ये है कि तीन लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर हमारा जन्म ना हुआ हो। कोई व्यक्ति यदि आपको ये कहे कि हाँ आप मियामी घूमे, अरे साहब हम तो रहते हैं, आप लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना, कोई मेरे से अभी ये पूछे कि आप जयपुर घूमे हुए हो क्या? अरे जयपुर में जन्म हुआ है मेरा भाई, आप घूमने की बात कर रहे हो, जिंदगी वहां बिताइए। माने जिस स्थान पर हमारा जीवन बीता हो, जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ हो, उस स्थान को भला हमसे ज्यादा कौन जानेगा? यहाँ ये कह रहे हैं कण कण को, माने कण कण में हमारा जन्म हुआ है। अतीत काल में इतने अनंत जन्म हमने धारण किए हैं, इतने भव हमारे को हुए हैं अभी तक, कि एक एक जगह पर यहाँ जन्म लिया, फिर यहाँ जन्म लिया, फिर यहाँ जन्म लिया, फिर यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, असंख्यात असंख्यात बार जन्म लिए हैं। ऐसे अनंत जन्म हो गए हमारे को जी भर के घूमते हुए। अच्छा फिर कितना सुखी हो गए होंगे जब हम यहाँ से घूमने का प्लान बनाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कितना सुखी होते हैं? इसका मजा तो आता है, इतना मजा आता है कि दो चार छह दिन बाद में लगता है कि अब चलें वापस घर। घर की याद आने लगती है, परिवार की याद आने लगती है, परिवार साथ में हो तो भी काम की याद आने लगती है। बाहर तो बाहर ही है, निज घर के बिना चैन कहीं नहीं है। कितना भी घूम लो, अब कितनी फर्स्ट क्लास फैसिलिटी हो, 5-स्टार होटल में हो चाहे 7-स्टार होटल में हो, आपके जवान से शब्द निकले और नौकर चाकर आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो, तो भी घर तो घर ही होता है। आप ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते वहाँ, आप सुखी नहीं हो सकते इन सब चीजों से, क्योंकि ये सब सुख का मार्ग नहीं है, सुखी होने के लिए नहीं है। हम सोचे कि इसके माध्यम से सुखी हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। कोशिश की है हमने कई बार, तो कुछ तो सुख मिला होगा कि नहीं मिला। साथ उस लाइन को इन्होंने यहाँ लिखा है, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। हिरण के समान मृग तृष्णा के पीछे पानी की तरफ दौड़ता चला जाता है, लेकिन पानी तो है ही नहीं। रेगिस्तान में दूर से पानी चमकता हुआ दिखाई देता है और पानी समझ करके दौड़ता है, और जब वहां तक पहुंचता है तो पानी नहीं मिलता। फिर कहीं दूर पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, फिर दौड़ता है, और फिर वहां पानी तो था ही नहीं, लग रहा था उसको, दिखाई दे रहा था। इस तरह दौड़ता दौड़ता वो प्राण गंवा देता है। हमारी भी यही हालत है जब हम यहाँ बैठे हैं। देखिए किसी व्यक्ति की यदि अपन बात करें, कोई झोंपड़ी में रहता है तो उसे ऐसे लगता है कि थोड़ा पक्का मकान हो तो मैं सुखी हो जाऊं। तो झोंपड़ी में रहता है तो पक्के मकान की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है, वहां जाकर के सुखी होना चाहता है। जब पक्का मकान हो जाता है तो सोचता है काश एक अच्छा फ्लैट होता। ये मकान तो पक्का हो गया, लेकिन फ्लैट होता तो कितना अच्छा होता। अब फ्लैट में रहने लगता है तो सोचता है एक बंगला होता। जब बंगले में रहने लगता है तो लगता है एक अच्छा बड़ा फार्म हाउस होता। माने इसकी इच्छाएं जहाँ है वहाँ सुख नहीं, सुख के लिए वहाँ तक आया था, लेकिन वहां सुख नहीं मिला, आगे सुख दिखाई देने लगा। मृग तृष्णा का अर्थ यही तो है, जहाँ पहुंचा है वहाँ पानी नहीं दिख रहा, आगे पानी दिख रहा है, फिर दौड़ता है, फिर वहाँ नहीं मिला, फिर आगे दिखाई दे रहा है। हमारी भी ऐसी स्थिति है, जितना है उसमें सुख नहीं लग रहा, उसमें संतुष्टि नहीं है, आगे आगे देखते चले जाते हैं, आगे के बारे में विचार करते रहते हैं, काश ऐसा हो जाता, ये और हो जाता, अब ये चीज और इसमें ऐड हो जाए तो मजा आ जाए, ये चीज और मिल जाए तो और मजा आ जाए, ऐसा चिंतन हमारा बराबर चलता रहता है। और इसी का नाम है दुख, इच्छाओं जनित दुख। यदि इच्छाओं से दुखी है तो मृग सम हिरण के समान, मृग तृष्णा मृग मरीचिका, इसे मृग तृष्णा कहते हैं, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, सुख की रेखा मात्र भी नहीं मिली, किंचित मात्र भी मेरे को सुख नहीं मिला। ऐसा थोड़ा बहुत तो सुखी हुआ ही होगा, नहीं सही ज्यादा थोड़ा बहुत तो हुआ होगा कि बिल्कुल नहीं, रंच मात्र भी नहीं मिला ही नहीं सुख। सुखाभास है, सुख का भ्रम है, हमें ऐसे लगता है कि हम सुखी हो गए लेकिन सुखी हुए नहीं है, आकुलता ही तो है और क्या है। मैं दो बातें आपसे पूछता हूँ। एक व्यक्ति बहुत गर्मी में बाहर धूप में से आ रहा है, अपने यहाँ धूप से आया है, गर्मी से आया है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति घर में ही बैठा है एसी में, और हमने बहुत अच्छा ठंडा शरबत बनाया और दोनों व्यक्तियों को एक एक गिलास शरबत का दिया, दोनों में से किसको अच्छा लगेगा? किसको ज्यादा अच्छा लगेगा?
गर्मी में से आया,
जो गर्मी में से आया है उसको। अब मेरा इसमें ये प्रश्न है कि शरबत तो दोनों को एक जैसा दिया है, शरबत की क्वांटिटी क्वालिटी सब एक जैसी है, उसकी ठंडक सब एक समान है, तो एक को ज्यादा और एक को कम क्यों? माने वो जो सुख लग रहा है उस सुख के पीछे आधार क्या है, किस धरातल पर टिका हुआ है वो सुख? गर्मी के दुख, समझ आ रही है बात? माने उस सुख की आधारशिला जिसे हम इंद्रिय जन्य सुख कह रहे हैं, उस इंद्रिय जन्य सुख की आधारशिला है दुख, पीड़ा। जब तक पीड़ा न हो, जब तक वेदना न हो, जब तक तकलीफ न हो, तब तक वो सुख सुखरूप नहीं लगता हमारे को, उसमें आनंद नहीं दिखाई देता। एक व्यक्ति 2-3 हजार रूपए महीना कमाता है और उसको लॉटरी लगी और 50 हजार रूपया उसके निकला लॉटरी में, 50 हजार रूपया निकला, 3 हजार रूपए महीना कमाने वाला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति 1 लाख रूपया महीना कमाता है, डॉलर समझ लो आप लोगों की भाषा में, $1,00,000 कमाता है मान लीजिए, या $10,00,000 कमाता है और उसके $1,00,000 लॉटरी में निकले। दो व्यक्ति है, 2-3 हजार वाले के 50 हजार लॉटरी में निकले और 10 लाख वाले के $1,00,000 की लॉटरी निकली, दोनों में से किसको सुख ज्यादा होगा?
2 हजार वाले।
क्या बात कर रहे हो आप, उसके तो 50 हजार ही मिल रहा है और उसको 1 लाख मिल रहा है, इसका मतलब सुख 50 हजार और 1 लाख में नहीं है। क्या भाई, 50 हजार में और 1 लाख के अंदर यदि सुख होता तो लाख वाले को ज्यादा मिलना चाहिए था सुख। आप कह रहे, आप लोग ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख वाले को सुख कम है और 50 हजार जिसको मिले उसको सुख ज्यादा है, ये कैसी उल्टी बात है? उल्टी बात नहीं है, बात है अपेक्षा की, बात है इच्छा की, बात है आवश्यकताओं की पूर्ति की, बात है उसके पीछे हमारी कितनी इच्छाएं जुड़ी हुई है, आकांक्षाएं कितनी है। इसका मतलब ये, जिसकी आकांक्षाएं ज्यादा होती है उस व्यक्ति को प्राप्ति पर सुख ज्यादा प्रतीत होता है, वस्तु से सुख नहीं है, ये इसकी मान्यता में सुख दुख का अनुभव हो रहा है। पदार्थ से यदि सुख दुख होता तो 1 लाख वाले को ज्यादा होना चाहिए था और 50 हजार वाले को कम होना चाहिए था, यदि वस्तु से संबंध होता तो, किंतु वस्तु से तो संबंध रहा ही नहीं। यहाँ वस्तु से संबंध होता तो दोनों शरबत पीने वालों को सुख बराबर होना चाहिए था, लेकिन वस्तु से तो संबंध नहीं है। इस तरह से हम सैकड़ों बातों में लगा करके देख सकते हैं, हमारे को बिल्कुल स्पष्ट अनुभव में आएगा कि सुख पर वस्तुओं में नहीं है, सुख संयोगों में नहीं है, और इनमें भी जो सुख लग रहा है वो सुख दुख के धरातल पर है, दुख का बीज उसमें पड़ा हुआ है। जो वस्तु प्राप्त हो गई है वो वस्तु कितने दिन टिकेगी, जिनमें सुख मान रहे थे उनमें सुख है या नहीं है। सुखा मुझको न मिली सुख की रेखा, यदि ऐसा लगता हो कि मुझे सुख नहीं मिला है तो फिर ये जीव सुख प्राप्त कर पाएगा, सुख के लिए प्रयास करेगा, सुख के लिए कोशिश करेगा। हमारी कोशिश ही नहीं चलती है सुख के लिए, सच में हम जो कुछ भी कोशिश करते हैं वो कोशिश पता नहीं किस चीज के लिए चल रही है, किधर दौड़ रहे हैं हम लोग, सब जानते हैं लेकिन फिर भी दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, न मालूम किधर भाग रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रसंग हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में आया, रशिया का कोई एक व्यक्ति था, नहीं चाइना का था, और वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बहुत धनवान व्यक्ति था, उसकी वाइफ ने उसके ड्राइवर से शादी कर ली, और उसने ड्राइवर से शादी कर ली, और फिर कुछ थोड़े समय बाद में उस वाइफ की भी डेथ हो गई। तो ड्राइवर का ये स्टेटमेंट था, नौकर का ये स्टेटमेंट था कि हमें ऐसा लगता था कि जीवन भर हम लोग मालिक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है कि जीवन भर मालिक लोग हमारे लिए काम करते रहे। उसका कहना था ये कि हमें क्या पता था, हमें तो लग रहा था हम मालिक के लिए काम कर रहे हैं, और सच्चाई ये थी कि वो जीवन भर हमारे लिए कमाते रहे और फिर छोड़ करके चले गए हमारे लिए। ये दुनिया का ऐसा स्वरूप है, वस्तु स्वरूप इसी प्रकार का है, कौन कमाता है, किसके लिए कमाता है, कौन भूखता है, कौन आकर के उसका उपभोग करेगा, कौन कितना उपभोग करेगा, कितना छोड़ करके चला जाएगा, ये सब स्वरूप इसी प्रकार का है। तो इनमें सुख नहीं है, मुझको न मिली सुख की रेखा, तो फिर क्या करें साहब, सुख लगता तो है हमारे को, कि तुझे जो सुख लगता है ये गलत लगता है, तो एक बार अपना चिंतन बदल, फिर सुख नहीं लगेगा। विषयों में सुख इसलिए लगता है कि तुझे ऐसे लगता है कि ये बने रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये कि टिक ही नहीं सकते, कितना ही स्वरूप नहीं है। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं ऐसा, जम किंचि वि उत्पन्नम तस्य विनाशो हवेणीयमेण, जम किंचि वि उत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है तस्य विनाशो हवेणीयमेण, नियम से उसका विनाश होगा। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु उत्पन्न हुई हो और जिसका विनाश नहीं हो, उत्पन्न की बात कर रहे हैं। आत्मा उत्पन्न भी नहीं हुआ नया, इसलिए विनाश भी नहीं होगा। छह द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये छह द्रव्य नए उत्पन्न भी नहीं हुए इसलिए इनका विनाश भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो अवस्थाएं मकान बनाए निश्चित तौर पर नष्ट होगा, पुस्तक बनी है निश्चित तौर पर नष्ट होगी, गाड़ी बनी है तो बिगड़ेगी भी। जम किंचि वि उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे, उसका विनाश होगा नियमेन, नियम से होगा। अब ये सोचता था कि इसका विनाश नहीं हो और उसका विनाश होता है, तो ये सोचता है अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, रोको इसको, बचाओ इसको, कोशिश करो इसको बचाने की, ये इसका चिंतन चलता रहता है। यहाँ लिखा इन्होंने देखिए, बारह भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना, ये बात तो ख्याल नहीं, अनित्यता का चिंतन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम नित्य रखना चाहते हैं, इसलिए अनित्यता का चिंतन आचार्यों ने संतों ने सबसे पहले लिखा है। क्या लिखा अनित्यता के चिंतन में, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, क्षण भंगुर, झूठे जग के सपने सारे, जगत के सारे सपने झूठे हैं। और झूठी मन की सब आशाएं, मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, तमन्नाएं हैं, ये भी सब झूठी है। तन, जीवन और यौवन सब अस्थिर है। शरीर अस्थिर है, जीवन क्षणभंगुर है, यौवन भी क्षणभंगुर है। युवा अवस्था में हमारे को बहुत शरीर चलता है तो हमारे को अभिमान लगता है, पर चलता है जैसा चाहे कर सकते हैं हम, बहुत सुंदर दिखता है तो अभिमान करता है, और फिर थोड़े समय बाद में सर से बाल जाने लगते हैं, मुख से दांत निकलने लगते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, घुटने जवाब देने लगते हैं, कमर दर्द करती है, सीधा बैठा नहीं जाता है, नीचे बैठ नहीं पाते हैं। बोलो कैसी हालत होती है हमारी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है, इस तरह का अनुभव में आती है ये सब बातें। शरीर का स्वरूप ही इसी प्रकार का है, हम कितना भी इसको स्थिर रखने की कोशिश करें, कितना भी मेंटेन करके चलने की कोशिश करें, लेकिन बिगड़ना ही इसका स्वरूप है। संभालते संभालते भी नहीं संभलेगा, हमारी लाख कोशिश कर लें हम, लेकिन इसका स्वरूप बदलना और बिगड़ना ही है, इसका ही नहीं प्रत्येक वस्तु का। जो वस्तु सुबह जैसी है शाम तक उसका टेस्ट बदल जाता है। अभी कैरी आम आपके यहाँ बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छा स्वाद है उनका, लेकिन रखिए उनको एक महीना 15 दिन, बदलना ही स्वरूप है उसका। तो झूठे हैं ये सब सपने कि हम इसको बनाए रखें, सारे सपने झूठे हैं बनाए रखने की। देखिए आप हर चीज को स्थिर रखना चाहता है। एक वाक्य हमने पढ़ा था कि ये जीव अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहता है। लाइफ टेम्परेरी है और इसको परमानेंट चाहिए, बाजार से लेकर के आएगा कोई चीज, लाइफ टाइम गारंटी वारंटी चाहिए। किसकी लाइफ टाइम, किसकी लाइफ टाइम की बात कर रहा है? ये परमानेंट नहीं है, उसे भोगने वाला, उसका उपभोग करने वाला। तो हर चीज क्षण भंगुर है, हर चीज टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी लाइफ में किसी चीज की परमानेंसी की कल्पना नहीं करें, वो कल्पना झूठी कल्पना है। इसलिए झूठे जल के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, मन की समस्त आशाएं भी झूठी है। और तन, जीवन और यौवन, जीवन की क्षणभंगुरता का विचार तो सदा काल करने योग्य है, हर समय। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये जीव पाप से छूटना चाहता है तो हर क्षण मरण का विचार करे तो पाप नहीं कर सकता। ये अपने आप को अमर मानता है, दूसरों को शमशान पहुंचा करके आता है और ऐसा समझता है कि मैं तो अमर हूँ। आज वो चले गए, आज वो चले गए, दूसरों की चर्चाएं करते रहेंगे, दूसरों की मौत की बातें करते रहेंगे, हम मुझे भी मरना है इसका विचार नहीं चलता। हम तो बराबर, हम तो रहेंगे। अब देखिए इसमें भी गलत है, हम तो अमर हैं, वास्तव में अमर हैं, लेकिन जिसको हम समझ रहे हैं ना वो अमर नहीं है। सच्चाई है ये तो कि मैं तो अमर हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरा जन्म भी नहीं हुआ, मेरा मरण भी नहीं होगा, मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, ठीक है ना। जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ, कभी हो सकता नहीं, कोई मुझे मार सकता नहीं, ये चिंतन तो सच्चा चिंतन है, लेकिन ये शरीर सहित अमर मानता है। ये शरीर तो छूट जाने वाला है ना, जब ये कहता है कि मैं नहीं मरने वाला, अरे साहब अभी से मरूंगा क्या। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मैं कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट जैसा करके देखता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि साहब कितना जीवन और है आपका, आप अभी तो कितना, अरे साहब अभी तो जिएंगे कितना, 30-40 साल तो अभी इतना तो है। मैं भाई आपसे पूछे 20-25-30 साल तो अभी तो उम्र ही क्या होगी, 50 के आसपास होंगे और क्या, तो 30-40 साल तो अभी कम से कम अपने पास में है। और किसी 70 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति से मैं पूछता हूँ तो वो ये कहता है, अरे पंडित जी और 10-5 साल के मेहमान है। 90 वर्ष के अभी बाबूजी से भी पूछे تو وہ بھی ایسا کہتے ہوں گے کبھی کبھی بول چال کی بھاشا میں, اور سال دو سال کے مہمان ہیں بھائی سن لو, ہماری سنتے نہیں ہو تم لوگ, تم مانتے نہیں ہو. ہم نے بالکل پریکٹیکل دیکھا ہے, میرے نانا جی کی عمر 94 سال کی ہے, کبھی کبھی باتوں میں ایسا کہہ دیتے ہیں اور سال دو سال کے مہمان ہیں ہم. تو کسی بھی ویکتی سے آپ چرچا کریں, ہر ویکتی سال دو سال, 10-20 سال, 30-40 سال اس طرح کی باتیں کریں گے, لیکن وہ 10-20 سال, سال دو سال کب منٹ اور سیکنڈ میں بدل جاتے ہیں اور کب جیون پورا ہو جاتا ہے پتہ نہیں لگتا ہمارے, کب ختم ہو جاتا ہے ایک دم جھٹکے سے. ہم تو ایسا سوچ رہے تھے کہ چلے گا, مینٹین رہے گا سال دو سال, لیکن وہ سال دو سال کب سیکنڈوں میں بدل گئے اور کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا. پتہ نہیں کون سے موڑ پر آ کر کے ہمارا جیون ختم ہو جائے. یدی یہ جیو اپنے مرن کے بارے میں وچار کرتا رہے, چنتن کرتا رہے کہ ایک نہ ایک دن یہ سب چھوڑ کر کے چلے جانا ہے, سب چھوڑ کر کے چلے جانا ہے تو جوڑنے میں نہیں لگا رہے. اس سکھی ہونے کے نام پر ہمارے کو دو طرح کے مورکھ لوگ جگت میں دکھائی دیتے ہیں. سکھی ہونے کے نام پر پہلے پرکار کی مورکھتا جو 99% لوگ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں جوڑنا 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 اور جوڑنا, جوڑتے رہتے ہیں سکھی ہونے کے نام پر, بڑھاتے رہتے ہیں سمپتی کو, یہاں مکان لے لیا, وہاں مکان لے لیا, وہاں بنگلہ لے لیا, ایک اپن نے یہ گاڑی لے لی, اتنا بینک بیلنس ہو گیا, اتنے ایف ڈی ہو گئی, اتنے شیئرس ہیں, اتنا میوچل فنڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا کرتے رہتے ہیں, جوڑتے رہتے ہیں. کیا جوڑ رہے ہیں ہم سب؟ ایسا لگتا ہے سکھ سامگری جوڑ رہے ہیں, لیکن کیا یہ سامگری سکھ سامگری ہے جسے ہم جوڑ رہے ہیں؟ بہمولیہ جگت کا ویبھو یہ ہے, کیا ہم کو سکھی بنا سکتا؟ ہرے پورنتا پانے میں کیا اس کی ہے آوشیکتا؟ یہ بہمولیہ سارے جگت کا ویبھو کیا ہم کو سکھی بنا سکتا ہے؟ ارے پورنتا کی پراپتی کرنے کے لیے اس کی کیا آوشیکتا ہے؟ مجھے یدی پورنتا کی پراپتی کرنی ہو, مجھے یدی پورن سکھی ہونا ہو, تو اس کی کیا ضرورت ہے اس ویبھو کی؟ اس لیے پہلے پرکار کی مورکھتا کرنے والے لوگ جو 99 اور یدی اور زیادہ بڑھ کر کے کہیں تو 99.9% لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو سکھی ہونے کے نام پر دھن سمپتی اور ویبھو کو جوڑتے جوڑتے اور جوڑتے رہتے ہیں. ہاں کچھ پرسنٹ ایسا بھی ہے جو سکھی ہونے کے نام پر چھوڑنے کی جن کو دھن سوار ہے, چھوڑ کر کے سکھی ہوں گے ہم, تیاگ کر کے ہم سکھی ہوں گے, یہ چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا, دھیرے دھیرے کر کے سب چیزیں چھوڑتے گئے, سب تو سکھی ہو جائیں گے نا. ہم نے کہا دو طرح کے یہ دونوں ہی پرکار کی مورکھتا ہے. یہ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے جوڑنے سے سنیوگ جڑتے نہیں ہیں اور ہمارے چھوڑنے سے چھوٹتے نہیں ہیں, یہ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا. تیاگو پادان شنیتو نام کی شکتی ہے میرے میں, 47 شکتیوں میں 16 نمبر کی شکتی, تیاگو پادان سے شونیہ ہوں میں, تیاگ سے بھی شونیہ ہوں اور اپادان مانے گرہن کرنے سے بھی شونیہ ہوں. میں پر وستوں کا گرہن کر سکتا ہوں, میں پر وستوں کو چھوڑ سکتا ہوں, پر پدارتھوں کا گرہن اور تیاگ دونوں ہی میرے میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو گرہن کرنے کی مانیتا بھی اور چھوڑنے کی مانیتا بھی, دونوں ہی مانیتائیں وپریت مانیتائیں. میں نے گرہن کیا, میں نے جوڑا, یہ بھی الٹی مانیتا ہے, اور میں چھوڑتا ہوں یہ بھی الٹی مانیتا ہے. نہ تو جوڑتا ہوں اور نہ ہی چھوڑتا ہوں, تو کیا کرتا ہوں؟ جوڑنے کا بھاو کرتا ہوں اور چھوڑنے کا بھاو کرتا ہوں. کیا بھاووں سے گرہن ہوتی ہے وستو اور بھاووں سے چھوٹتی ہے, پدارتھوں کے چھوڑنے اور گرہن کرنے سے نہیں چھوٹتی ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں, ایک ویکتی بہت اچھا سیٹھ تھا, بہت پیسہ تھا, اور وہ کسی سادھو کے پاس میں, کسی منیراج کے پاس میں, سنت کے پاس میں گئے, وہاں جا کر کے ان کا اپدیش سنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ ویکتی پریگرہی ہے یا نہیں ہے؟ بہت زمینیں ہیں اس کے نام, بہت ایف ڈی ہیں, لاکر بینک میں بھرے ہیں, تجوریوں میں دھن بھرا ہوا ہے, کئی بزنس چل رہے ہیں اس کے. وہ ویکتی جو منیراج کے پاس میں بیٹھا ہے, سادھو مہاتما جی کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ویکتی پریگرہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے صاحب پریگرہی ہے. है, बहुत परिग्रह है, बहुत परिग्रह है उसका। दुनिया आसपास में जो लोग बैठे हैं वो भी बातें करते हैं, सेठ साहब हैं, पता है बहुत बहुत ऊंची हस्ती है, ऐसी बातें करते हैं लोग। क्यों परिग्रही है आपसे पूछें तो आप क्या कहते हैं? अरे साहब उसकी जमीन जायदाद उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, कितना नाम है, क्या क्या है उसके नाम आपको पता ही नहीं है, कितने बैंकों में खाते चलते हैं उसके, कितने अकाउंट्स हैं कि ठीक है। कौन घंटा उसने मुनिराज का प्रवचन सुना और उसके मन में दीक्षा लेने का भाव आया, मुनिराज से दीक्षा का निवेदन किया और मुनिराज ने दीक्षा की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब बोलिए वो परिग्रही है या नहीं है? हाँ परिग्रही नहीं है, अब वो दीक्षा ले रहा है। अब परिग्रही क्यों नहीं है भाई? अभी भी बैंक बैलेंस सारा जो भी है सब उसी के नाम है, अभी भी प्रॉपर्टी तो उसी का नाम है, अभी भी बिजनेस उसी के नाम है। अब क्या हो गया, अब क्या बदल गया? अंदर से बदल गया बस, यही तो बदलना है। जो पदार्थ जहाँ है वो वहीं रहेगा। अभी घर पे सूचना भी नहीं दी है, परिवार में पता भी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, यही उपदेश सुनकर के भाव बदल गया और यही दीक्षा भी ले ली। सारा का सारा पता नहीं कौन नॉमिनी होगा, क्या होगा अभी, लेकिन अभी प्रेजेंट पोजीशन तो ये है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेठ साहब के नाम है, लेकिन सेठ जी परिग्रही नहीं है। इसका मतलब ये अंदर से बदल गया, अंदर से बदलना है बाहर से नहीं। हम लोग बाहर से बदलना चाहते हैं, अंदर से नहीं बदलना चाहते। हम लोग बाहर से दिखाना चाहते हैं, मैंने पहले भी कही है चर्चा यहाँ कि हम जैसा दिखना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा यदि अंदर से बदल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, जैसा हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, लोगों को जैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं हम कि लोग हमारे को ऐसा देखें, लोग हमारे को देखें कि मैं बहुत सरल हूँ, लोग हमारे को देखें कि अरे साहब ये तो बहुत सीधे हैं, लोग हमारे को देखें कि साहब ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है। अंदर से सज्जन बनना चाहता है कि नहीं, दिल से सरल बनना चाहता है कि नहीं, वो परिवर्तन अंदर से होगा। और वो परिवर्तन तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, वस्तु स्वरूप के विचार के बिना नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप और तत्व ज्ञान का चिंतन ही ऐसा है जो हमारे को सुखी कर सकता है, जो अंदर से बदलता है। हम तो कई बार ऐसा भी कहते हैं जैन दर्शन जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर दे, उसका नाम है अंदर से बदल जाए। बाहर में भोजन वही, घर वही, कपड़े वही, परिवार वही, सब कुछ वही, लेकिन अंदर से दुनिया बदल गई, उसका नाम है जैन। जैन किसका नाम, कौन होते हैं जैन? सब कुछ बदल गया अंदर से, सोच ही बदल गई, चिंतन ही बदल गया, चिंतन के विषय जो थे वो सब बदल गए। कि कैसा चिंतन चलने लगा, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। इतना क्षण भंगुर है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और बात करते करते ही आपको ये क्या हो गया पंडित जी, गए ये क्या हुआ? कोई उम्र की लिमिटेशन है क्या कि नहीं साहब 40 साल के पहले तो कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, ऐसा कुछ होता है? कोई भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है। गर्भ में मरण होते हैं, निकलने पर मरण होते हैं, 2 दिन का बच्चा मर जाता है, 10 वर्ष का मर सकता है। तो हम तो अभी जिएंगे थोड़ा है। कब होगी आयु पूरी, कौन सी जगह होती है? हॉल में बैठे हुए आयु पूरी होती है, दुकान पे बैठे हुए होती है, खाना खाते हुए होती है, नाश्ता करते हुए होती है? नहीं नहीं, नाश्ता करते हुए तो हमने सुना नहीं कभी किसी की मौत नहीं हो सकती। ब्रेकफास्ट करते हुए कहीं भी हो सकती है भाई, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि ये भी कोई जगह है। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करते करते मौत नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा मौत के बारे में भी आप विचार निरंतर करते रहेंगे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है तो आप सदैव सावधान रहेंगे, हमेशा सावधान। मृत्यु का चिंतन या अनित्यता का चिंतन हमारे को सावधान बनाता है, हमारे को जागृत बनाता है, बी अलर्ट। क्यों, क्या पता कब मौत आ जाए? اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد میں؟ پھر تو کچھ ٹھکانا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا دکھ مرتیو کا دکھ ہے. بھائے سات پرکار کے بھائیوں میں سب سے ادھک یدی بھائے کسی چیز کا کہا ہے تو ہے مرتیو, موت کا بھائے. یہی لوک بھائے, پرلوک بھائے, مرن بھائے, ویدنا, آکسمک, ارکشا, اگپتی, یہ جو سات بھائے ہیں ان سات بھائیوں میں سب سے بڑھ کر یدی کچھ ہے تو مرن کا بھائے ہے. جس کی کلپنا ماتر سے گھبراتا ہے یہ ویکتی روڈ کراس کرتے سمے. آپ کے یہاں تو بہت اچھا ہے کہ کوئی ویکتی روڈ کراس کر رہا ہو تو پہلے سے گاڑی روک لیتے ہیں, ہمارے انڈیا میں تو حالت خراب ہے. روڈ کراس کر رہے ہیں ہم, بہت تیز اسپیڈ سے گاڑی آئی اور ہمارے بغل میں آ کر کے اس نے بریک لگایا بہت تیز, اور ایک انچ کے فاصلے پر وہ گاڑی رک گئی. اس نے ہمارے کو ٹچ نہیں کیا, پھر بھی ہماری دھڑکن دس منٹ تک رکتی نہیں ہے, مر جاتا تو. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہم بڑبڑانے لگتے, دیکھ کے نہیں چلتے ہو, کتنا تیز گاڑی چلاتے ہو. ارے بھیا دیکھ کے چلا تھا تبھی تو کچھ نہیں ہوا, روک لیا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھ کے نہیں چلتا ہے. دیکھو اب لیکن موت سے ڈر لگتا ہے ہمارے کو. مطلب لوگ تو موت کی چرچا کرنے کو بھی اچھا نہیں کہتے. کئی بار تو کوئی پرسنگ چل رہے ہوں شادی وواہ کی اور کوئی ویکتی موت کی بات, ارے شبھ شبھ بولو, اشبھ بات مت کرو, موت کی بات میں, موت کی چرچا کرنا بھی اس جیو کو اشبھ لگتا ہے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں موت کا چنتن وہ آپ کے لیے شبھ ہے, کیونکہ وہ چنتن آپ کو جاگرت رکھے گا, سچیت رکھے گا, ساودھان رکھے گا. اور ہم ہماری کیا بات کریں, بڑے بڑے راجا مہاراجا جیسے ہی کہاں گئے, چکری جن جیتا بھرت کھنڈ سارا, کہاں گئے وے رامن لکشمن جن راون مارا, کہاں کرشن رکمنی ست بھاما ہرو سمپتی سگری, کہاں گئے وے لوبھی کورو جو مرے رن میں. بولو کیسی پوری منگت رائے جی نے چرچا کی ہے, سب کھنکتا دکھائی دے رہی ہے. راجا رانا چترپتی ہاتھن کے اسوار, مرنا سب کو ایک دن. کون سا دن؟ ججمنٹ ڈے. ایسا کوئی دن جس دن سب ختم ہو جائے گا, پرتھوی ختم ہو جائے گی. ایسا تھا نا بیچ میں تو آیا تھا ایک اس طرح کا نیاک وغیرہ کے اندر بہت ایسا چلنے لگا تھا, لوگ سوچنے لگے تھے کہ اس دن تو پرتھوی ختم ہو جائے گی. ہم نے ایسا سنا ہے کہ آخری دن ہے اس دنیا کا, اس دھرتی کا. تو مرنا سب کو ایک دن, ایسا کون سا دن ہوگا؟ ارے ایک دن کا ارتھ کیا؟ اپنی اپنی بار. جب اپنا ٹرن آئے گا, اپنا جب نمبر آئے گا تب مرنا ہے. ارے صاحب موت سے تو آپ موت موت کی بات کر رہے ہیں, گھبراہٹ ہونے لگتی ہے ہمارے کو مرتیو کی چرچا سننے پر. جب ایسی باتیں کرتے ہیں سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے, مر جانا ہے, تو پھر اداس ہوتا ہے یہ ویکتی, اداسی آتی ہے. ابھی تک جو ہنسی خوشی کا جو ماحول چل رہا تھا اور آپ نے کہا کہ اس کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے, تو ایک دم وہ جو ہنسی خوشی تھی نا وہ ماحول تھوڑا سا ماتم میں بدل جاتا ہے, وہ پرسنتا نہیں رہتی چہرے پر جب موت کے خیال میں آتی ہے. تو پھر یہ انتتا کا چنتن دکھ دینے والا ہوا پھر تو. ارے صاحب یہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. گھر میں کسی بچے کا جنم ہوا اور کسی نے کہا کہ ارے کیا جنم کی خوشیاں مناتے ہو, ایک نہ ایک دن مرے گا. ارے بھیا تو یار مرنے کی بات مت کر, ابھی تو جنم ہوا ہے اس کا, مرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم اچھی بات نہیں سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ انتتا کا چنتن یتھارتھ چنتن تب کہلائے گا جب آپ انتتا کے ساتھ میں نتیتا کا بھی چنتن کریں. انتیہ تو ہے ہی سب سنیوگ, سب کھن منگور ہیں ہی, لیکن اس انتیتا کے بیچ میں کچھ ایسا بھی ہے جو نتیہ بھی ہے, جو پرماننٹ بھی ہے, جو کبھی نہیں بدلتا ہے. اس سندرب میں ہمارے کو جے چند جی چاوڑا کی بارے بھاونا بہت مارمک ہے جو اسمرن رکھنے یوگیہ ہے. انتیہ بھاونا کا چنتن کرتے ہوئے جے چند جی چاوڑا نے لکھا, سنی ہوگی آپ نے پنکتیاں, द्रव्य रूप करी सर्व थिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको पर जय नय करी गौन, पर जय नय करी गौन। अनित्य भावना के बारे में लिखते हैं वे, द्रव्य रूप से सब स्थिर है और पर्याय रूप से सब अस्थिर है। ये अनित्य भावना का चिंतन। पर्याय दृष्टि से देखो तो कुछ भी स्थिर नहीं है, पर्याय दृष्टि से सब क्षण भंगुर है, पर्याय दृष्टि से सब नाशवान है, पर्याय दृष्टि से सब बदलने वाला है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब नित्य है, सब स्थिर है। अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखोगे तो क्षणिक और क्षण भंगुर पाओगे, परिवर्तनशील पाओगे। जब अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो आप नित्यता का अनुभव करोगे, अजर अमरता का अनुभव करोगे, अपूर्व और अपार शांति का अनुभव करोगे। इसलिए वस्तु स्वरूप का विचार करो, अपने आत्म स्वरूप के बारे में अमरता का विचार करो कि मैं शाश्वत हूँ। परमानेंट वस्तु के अवलंबन से परमानेंट सुख मिलता है, टेम्परेरी वस्तु के अवलंबन से परमानेंट सुख नहीं मिल सकता है। हम परमानेंट सुख टेम्परेरी वस्तु के अवलंबन से चाहते हैं, सुख चाहते हैं परमानेंट, जिसका अवलंबन ले रहे हैं वो है टेम्परेरी। अब क्या होगा, तो फिर क्या करें, कोई चीज बतलाओ जो परमानेंट हो। कि है ना आत्मा, वो परमानेंट है, तो आपको परमानेंट सुख चाहिए ना, तो परमानेंट वस्तु का अवलंबन लो तो परमानेंट सुख मिलेगा। टेम्परेरी वस्तु के अवलंबन से टेम्परेरी सुख, परमानेंट वस्तु के अवलंबन से परमानेंट सुख। आपको परमानेंट सुख चाहिए या टेम्परेरी सुख चाहिए? सबको सुख चाहिए परमानेंट, और अवलंबन टेम्परेरी का। अब तो प्रयास ही उल्टा चल रहा है, कोशिश ही उल्टी चल रही है। इसलिए का वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, कैसा है वस्तु का स्वरूप, कैसी है वस्तु, पदार्थ कैसा है, उसका चिंतन किस प्रकार का चलना चाहिए, अपने आप का चिंतन किस प्रकार का चलना चाहिए, और पदार्थों को देख करके उनका चिंतन कैसा चलना चाहिए। कि ये जो वस्तु दिखाई दे रही है, यह वस्तु क्षणिक है, यह वस्तु परिवर्तनशील है, ये वस्तु जिस रूप में वर्तमान में दिखाई दे रही है उस रूप में भविष्य में नहीं रहेगी, किंतु वस्तु स्वरूप कायम रहेगा। यह अनित्य भावना का चिंतन है। वस्तु स्वरूप कायम रहेगा, स्वरूप उसका जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल का पुद्गलपना कायम रहेगा, स्पर्श गंध वर्ण सहित है, चेतन का चेतनपना कायम रहेगा। मैं हूँ जीव द्रव्य, नित्य चेतना स्वरूप मेरो, मेरा चैतन्य स्वरूप नित्य है। फिर चाहे नरक में चले जाए, चाहे निगूद अवस्था में चला जाए, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन फिर भी मैं नित्य ध्रुव और अविनाशी ही रहूंगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे चिंतन का नाम है अनित्य भावना का चिंतन। तो सबसे पहले इन्होंने अनित्य भावना के चिंतन की बात कही, कि आप क्षण भंगुरता का चिंतन करो। अब अनित्य के बाद में अशरण भावना कैसे आ गई? सेकंड नंबर अशरणता को क्यों मिला अनित्य के बाद में? ये जीव क्या सोचता है? जब हम इसको अनित्यता के चिंतन के बारे में कहते हैं तो ये जीव क्या तर्क करता है? इस जीव के माइंड में क्या चलने लगता है? ये जीव कैसा विचार करता है, कैसा सोचता है? अनित्यता की बात जचती है, इसको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है। जब अनित्यता का उपदेश दिया तो सब बात बराबर समझ में आ गई, लेकिन इसने एक नया तर्क प्रस्तुत कर दिया। वो तर्क क्या था कि साहब क्षण भंगुर तो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बचा लें। क्या? तो फिर आचार्यों को आगे लिखना पड़ा आचरण भावना, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे।
प्रयास हो ये जे स्वरूप बिना पाम्यो दुख अनंत ते सद्गुरु भगवंत परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदा ये सदा
जेनी दशा वरते देहातीत ज्ञानी नाचरणमा
ਜਾਣੀ